श्रोताओं नमस्कार। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत अगला अध्याय है जिसका शीर्षक है विश्व जलवायु प्रकार एवं वितरण, वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पृथ्वी पर अनेक ऐसे भूखंड पाए जाते हैं जहां जलवायु के प्रमुख तत्वों में समानता पाई जाती है। इस प्रकार उनकी जलवायुगत विशेषताओं में भी सादृश्य पाया जाता है। किंतु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि जलवायु में एक जैसी विशेषताओं वाले ये प्रदेश, जिन्हें जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है, समान अक्षांशों में पाए जाते हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति में भी विशेष अंतर नहीं पाया जाता। इस प्रकार यदि देखा जाए तो जलवायु प्रदेशों की संख्या बहुत बड़ी होगी। अतः भूगोलविदों ने समान जलवायु संबंधी विशेषताओं वाले बहुसंख्यक प्रदेशों क्लाइमेटिक रीजन्स को अपेक्षाकृत कम संख्या वाले जलवायु प्रदेशों क्लाइमेटिक टाइप्स में वर्गीकृत कर डाला। दूसरे शब्दों में जलवायु प्रदेश को जलवायु प्रकारों और जलवायु प्रकारों को जलवायु समूहों में सम्मिलित कर लिया जाता है। विभिन्न जलवायु प्रकारों की सीमाएं सुस्पष्ट और सुनिश्चित नहीं होती। वस्तुतः वे सभी संक्रमण पेटियों ट्रांजिशन जोन के रूप में पाई जाती हैं, जिनमें अनेक प्रकार की जलवायु की विशेषताएं धीरे धीरे परिवर्तित होकर दूसरे प्रकार की जलवायु में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार आसपास स्थित दो प्रकार की जलवायु में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। इसके अपवाद के रूप में कुछ ऐसे जलवायु प्रकार क्लाइमेटिक टाइप्स भी पाए जाते हैं जहां किसी अत्यधिक प्रभावशाली कारक का नियंत्रण होता है, जैसे पर्वतीय अवरोध अथवा सागर तट। पिछले अध्याय में कोपेन, थॉर्नथ्वेट तथा त्रिवार्था द्वारा प्रस्तुत विश्व जलवायु की प्रमुख समूहों ग्रुप्स की विवेचना की गई थी। प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न जलवायु प्रकारों और उनके उपवर्गों सब टाइप्स की जलवायु संबंधी विशेषताओं का अध्ययन किया गया है। विभिन्न जलवायु प्रकारों के नाम और उनके लिए प्रयोग किए गए अक्षर समूहों के लिए त्रिवार्था द्वारा प्रस्तुत जलवायु के नवीनतम वर्गीकरण को आधार माना गया है। ज्ञातव्य है कि त्रिवार्था का 1980 ईस्वी में प्रस्तुत जलवायु का वर्गीकरण कोपेन से मूलतः भिन्न है। उच्च स्थलीय प्रदेशों की जलवायु हाईलैंड क्लाइमेट्स को कैपिटल एच अक्षर से प्रदर्शित करने के अतिरिक्त त्रिवार्था ने विश्व की जलवायु को 6 प्रमुख जलवायु समूहों क्लाइमेटिक ग्रुप्स में विभाजित किया, जो इस प्रकार है: कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और तथा कैपिटल एफ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अति आद्र जलवायु, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, जिसको कि कैपिटल ए और स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। इस जलवायु को भूमध्य रेखी जलवायु अथवा अयनवर्ती आद्र जलवायु, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट भी कहा जाता है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री तक पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी किनारों की ओर इस प्रकार की जलवायु का विस्तार 15 डिग्री अथवा 25 डिग्री अक्षांश तक पाया जाता है। ऑस्टिन मिलर के मतानुसार विशिष्ट टिपिकल भूमध्य रेखी जलवायु विषुवत रेखा पर नहीं बल्कि 2 डिग्री और 8 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखी वर्षा की पेटी का पूर्ण विस्थापन 18 डिग्री उत्तर अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच होता है। इस प्रकार की जलवायु का संबंध प्रशांत मंडल डोल्ड्रम्स तथा अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से होने के कारण यहाँ ऐसे अनेक क्षीण वायुमंडलीय विक्षोभ वीक एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस उत्पन्न होते हैं जिनसे वर्षा होती है। इस उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश में वायुमंडल में अस्थायित्व इनस्टेबिलिटी पाया जाता है। इस जलवायु की ध्रुवी पोलवार्ड सीमा पर समानातुल्य जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपों के पूर्वी किनारे इसकी सीमा पर चीन तुल्य जलवायु चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट पाई जाती है। इस जलवायु के अंतर्गत निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित हैं: दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी की घाटी, अफ्रीका के कांगो नदी की घाटी, गिनी तट, दक्षिण पूर्व एशिया में मलेशिया का अधिकांश भाग, इंडोनेशिया तथा फिलीपीन द्वीप समूह, मध्य अमेरिका पनामा के कुछ भाग, कोस्टारिका, निकारगुआ, हॉन्डुरस, ब्रिटिश हॉन्डुरस और ग्वाटेमाला, पश्चिमी द्वीप समूह के कुछ द्वीप, पश्चिमी कोलंबिया, पूर्वी ब्राजील के तटवर्ती निचले मैदान तथा पूर्वी मेडागास्कर। तापमान टेम्परेचर 5 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, जिससे दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। अतः इस जलवायु में सूर्यातप इंसुलेशन की अधिकतम मात्रा उपलब्ध होती है। औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहता है। कुछ ऐसे भी स्थान इस पेटी में पाए जाते हैं जहां का औसत मासिक तापमान 24 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। इस जलवायु में वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम अंकित किया जाता है, जो 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। कुछ द्वीपों और तटवर्ती क्षेत्रों में तो वार्षिक तापांतर 0.5 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। अमेजन बेसिन में 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित पेरू के इक्विटास स्थान का वार्षिक तापांतर मात्र 2 डिग्री सेल्सियस है। अफ्रीका में नाइजर नदी के मुहाने पर स्थित अकासा में 2 डिग्री तथा पारा में 4 डिग्री सेल्सियस से कम वार्षिक तापांतर अंकित किया जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में ओशन द्वीप ओशन आइलैंड में वार्षिक तापांतर 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी प्रकार मार्शल आइलैंड में जलूत का वार्षिक तापांतर 0.4 डिग्री से 0 डिग्री अंकित किया जाता है। इस जलवायु में दैनिक तापांतर डायूर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर वार्षिक तापांतर की तुलना में बहुत अधिक होता है, जो 5 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। कभी कभी यहाँ रात का तापमान इतना नीचे गिर जाता है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस की यहाँ के आदिवासियों को ठंड लगने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि उष्णकटिबंध में रात ही शीतकाल है। नाइट इज द विंटर ऑफ द ट्रॉपिक्स। बोलोवो नामक स्थान का वार्षिक तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस है, किंतु वहां का दैनिक तापांतर 9 डिग्री सेल्सियस है। इस जलवायु में दिन का उच्चतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं अंकित किया जाता। तेज धूप, ऊंचा तापमान और शांत वायुमंडल सम्मिलित रूप से मौसम को बहुत कष्टदायी बना देता है। आकाश में बादलों की मोटी परत और वायुमंडल में नमी की अधिकता के कारण रातों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलती। रात्रकालीन शीतलन से धरातल कोहरे और ओस से प्रायः ढक जाता है। वायुदाब और पवन, प्रेशर एंड विंड्स। विषुवत रेखीय प्रदेश प्रशांत मंडल डोलरम में स्थित है, जहाँ पवन बहुत मंद गति से विभिन्न दिशाओं से चला करता है। वर्ष भर उच्च ऊंचे तापमान के कारण भूमध्य रेखीय प्रदेशों में तापमान प्रवणता टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत कम होता है, जिससे वायुभार प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट भी अत्यधिक मंद होती है। इसीलिए इन प्रदेशों में पवन का वेग बहुत कम होता है। इन प्रदेशों के मध्य भागों में वायुदाब प्रवणता इतनी मंद हो जाती है कि वहां वायुमंडल प्रायः शांत रहता है। डोलरम्स अथवा शांत पेटी में धरातल से लगी हुई वायु की मोटी परत गर्म होकर फैल जाती है, जिससे उसमें संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस प्रकार ऊपर उठने वाली वायु राशि रुद्धोष्म दर एडियाबैटिक रेट से ठंडी हो जाती है और आकाश में बादल बन जाते हैं, जिनसे बौछार के रूप में वर्षा सॉवरी प्रेसिपिटेशन होती है। इन प्रदेशों के ध्रुवी किनारों पोलवार्ड्स मार्जिन की ओर वायुदाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट अधिक प्रपाती स्टीप होने से विषुवत रेखा की ओर अस्थायी रूप से तेज हवाएं चलती हैं। वास्तव में ये सन्मार्गी पवने ट्रेड विंड्स होती हैं, जो अपने साथ उष्णकटिबंधीय गर्म महासागरों के ऊपर से भारी मात्रा में जल वाष्प ले आती हैं और जिनसे उत्पन्न कपासी वर्षी क्यूमुलोनिम्बस मेघों से भारी वर्षा होती है। पवन पेटियों के खिसकने के साथ ही विभिन्न ऋतुओं में विषुवत रेखीय के विभिन्न भागों में ट्रेड विंड से कुछ राहत मिलती है। इन प्रदेशों के मध्यवर्ती भागों में द्वीपों पर स्थित स्थानों का मौसम उमस भरा हुआ कष्टदायी ओप्रेसिव होता है, किंतु तटवर्ती क्षेत्रों में शीतल समुद्री समीर कोल सी ब्रिजेस से बहुत आराम मिलता है। किंतु इनके अतिरिक्त समय समय पर उत्पन्न होने वाले तड़ित झंझाओं थंडर स्टॉर्म्स से चलने वाले पवन के झोंके यहाँ के स्थानीय निवासियों को कुछ क्षणिक आराम पहुंचाते हैं। वर्षा प्रेसिपिटेशन। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में साल भर भारी वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय वर्षा वन प्रदेशों के कुछ भागों में वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर अंकित किया जाता है। पेरू में इक्विटास की औसत वार्षिक वर्षा 261 सेंटीमीटर है, जबकि अकासा और ओशन आइलैंड का वार्षिक औसत क्रमशः 366 सेंटीमीटर और 213 सेंटीमीटर अंकित किया जाता है। ज्ञातव्य है कि स्थल भागों की अपेक्षा सागरों पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि महासागरों के ऊपर की वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक रहती है। कुछ ऐसे भी स्थान यहाँ पाए जाते हैं जिनकी अनुकूल स्थिति के कारण वार्षिक वर्षा का औसत संपूर्ण प्रदेश की औसत से काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, भूमध्य रेखीय अफ्रीका में स्थित कैमरून पर्वत की तलहटी में वार्षिक का औसत लगभग 1000 सेंटीमीटर है। इस भारी वर्षा का कारण आर्द्रता से परिपूर्ण हवाओं का पर्वतीय अवरोध के द्वारा ऊपर उठाया जाना है। भूमध्य रेखीय प्रशांत मंडल डोलड्रम्स में वृष्टि के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। वहां सदैव आर्द्र एवं अस्थायी वायु की मोटी परत मौजूद रहती है। ऐसी वायु यदि थोड़ी सी ऊपर उठ जाए तो प्रचंड संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप घने वर्षाकारी मेघ उत्पन्न होकर भारी वर्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस जलवायु पेटी में स्थित अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व ट्रेड विंड्स के क्षैतिज अभिसरण हॉरिजॉन्टल कन्वर्जेंस के कारण पवन धाराएं ऊपर की ओर उठती हैं, जिनसे वर्षा होने में सहायता मिलती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्रायः अनेक तड़ित झंझा थंडर स्टॉर्म तथा सामान्य वायुमंडलीय विक्षोभ उत्पन्न होते रहते हैं, जो वर्षा में सहायक होते हैं। इस प्रकार प्रबल संवहन क्रियाएं, पवनों का क्षैतिज अभिसरण तथा असंख्य वायुमंडलीय उपद्रव सम्मिलित रूप से इस जलवायु प्रदेश में भारी वर्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु में लगभग 60% मेघाच्छादन क्लाउडीनेस पाया जाता है। अधिकांश मेघ कपासी क्यूमुलस होते हैं। आर्द्रता तथा मेघाच्छादन के कारण भूमध्य रेखीय गर्मी असह्य हो जाती है। अधिक आर्द्र प्रदेशों में दिन की भांति रातें भी उमसपूर्ण और कष्टदायक होती हैं। दिन में 3 से 4 बजे के बीच मेघों की मात्रा अधिकतम होती है, क्योंकि इस समय संवाहनिक क्रियाएं कन्वेक्टिव एक्टिविटीज अपनी चरम सीमा पर होती है। साधारण तौर पर प्रातः और रात में आकाश स्वच्छ हो जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस जलवायु प्रदेश में अत्यधिक मेघाच्छन्नता क्लाउडीनेस के कारण सूर्याभिताप की मात्रा कम प्राप्त होती है। यही कारण है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा भूमध्य रेखीय प्रदेशों में सूर्याभिताप की मात्रा कम प्राप्त होती है। बादल और वर्षा की अधिकता के कारण इन प्रदेशों में उच्चतम तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर्स उतना अधिक नहीं अंकित किया जाता जितना कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु में अधिकांश वर्षा संवहनी कन्वेक्शनल होती है। ऐसी वर्षा बड़ी तीव्रता के साथ कपासी वर्षी मेघों क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स तथा तड़ित झंझाओं से होती है। वर्षा प्रायः बादलों की गरज तथा बिजली की चमक के साथ होती है। कभी कभी एक ही दिन में कई तड़ित झंझाओं थंडर स्टॉर्म उत्पन्न हो जाती है। डोलड्रम्स की पेटी में प्रतिवर्ष 75 से 150 दिन तड़ित झंझा वाले होते हैं। संवहनी वर्षा के अलावा कमजोर चक्रवातों तथा पूर्वी तरंगों स्टर्ली वेव्स से भी भूमध्य रेखी प्रदेशों में वर्षा होती है। इस प्रकार होने वाली वृष्टि संवाहनिक वृष्टि से अधिक व्यापक क्षेत्र में होती है। कभी कभी दिन और रात के समय रुक रुक कर वर्षा इंटरमिटेंट रेन्स होती है। निर्बल वायुमंडलीय विक्षोभों से कई घंटे तक वर्षा होती है और संपूर्ण आकाश मेघाच्छादित रहता है। इस जलवायु क्षेत्र में भूमध्य रेखा के निकट हरिकेन अथवा टाइफून जैसे प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव पाया जाता है, किंतु विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर अथवा दक्षिण तटवर्ती इलाकों अथवा द्वीपों में प्रचंड उष्णकटिबंधीय तूफानों से कभी कभी बड़ी हानि होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु में शुष्क ऋतु नहीं पाई जाती, फिर भी वर्षा का मौसमी वितरण असमान होता है। वर्ष के कुछ महीनों में अधिक तथा कुछ में कम वर्षा प्राप्त होती है, किंतु किसी भी महीने में 6 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं होती। अधिक वर्षा वाले मौसम में अधिकांश दिनों वर्षा होती है, किंतु कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जब वर्षा बिल्कुल नहीं होती। इसके विपरीत कम वर्षा वाले मौसम में वर्षा वाले दिनों की संख्या कम होती है और वर्षा की मात्रा में भी कमी पाई जाती है। अमेजन घाटी में बेलेम नामक स्थान पर वर्षा की औसत मात्रा 239 सेंटीमीटर होती है, जिसका अधिकांश भाग मार्च में प्राप्त होता है। नवंबर में कुल 10 दिन ही वर्षा होती है, जबकि मार्च में वर्षा के दिनों की संख्या 18 है। वर्षा में वार्षिक अंतर भी उल्लेखनीय है, फिर भी अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले वर्षों में भी संपूर्ण वृष्टि फसलों के लिए पर्याप्त होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु में न केवल पर्याप्त वर्षा होती है, बल्कि उसकी विश्वसनीयता डिपेंडेबिलिटी भी अधिक होती है। तापमान की अपेक्षा वर्षा की वार्षिक परिवर्तनशीलता एनुअल वेरिएबिलिटी अधिक होती है। प्राकृतिक वनस्पति नेचुरल वेजिटेशन वर्ष भर ऊंचे तापमान और भारी वर्षा के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जलवायु में घने जंगल पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन होते हैं। अनेक प्रजातियों के वृक्ष परस्पर सम्मिलित रूप में ग्रिगेशियस पाए जाते हैं। एक छोटे क्षेत्र में भारी संख्या में अनेक प्रजातियों स्पीसीज के वृक्ष देखे जा सकते हैं। ब्राजील की वृष्टि वनों में कहीं कहीं 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षों की 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखी वर्षा वन को सेल्वॉस कहते हैं। इन वनों की सघनता के कारण वृक्षों में सूर्य प्रकाश के लिए मानो होड़ कंपटीशन सी लगी रहती है। यहाँ के वृक्ष काफी लंबे होते हैं। इन वनों के घनेपन के कारण कहीं कहीं सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं पहुंच पाती। कभी कभी वृक्षों के ऊपरी भाग परस्पर इतने निकट अथवा मिले जुले होते हैं कि सूर्य प्रकाश का केवल 1% भाग ही धरातल तक पहुंच पाता है। सूर्य प्रकाश के अभाव में धरातल पर वनस्पतियां नहीं उग पाती, किंतु जिन वनों में सघनता कम है वहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां धरातल को इस प्रकार ढक लेती हैं कि उनमें प्रवेश करना कठिन होता है। इन वनस्पतियों में लताएं, फर्न, आर्किड, काई तथा विभिन्न प्रजातियों के पौधे सम्मिलित हैं। इन वनों की अन्य विशेषता है कि एपिफाइट तथा लियानास जैसे लताएं पाई जाती हैं। इनमें एपिफाइट तो वृक्षों के तनों की दरारों अथवा कोटरों में उगती है, किंतु लियाना की जड़ें धरातल में होती हैं और इसकी शाखाएं रस्सी की भांति वृक्ष के चारों ओर लिपटी होती हैं। वृक्षों से लताएं धरातल तक लटकती रहती हैं, जहां जड़ें निकल आती हैं। इन उष्णकटिबंधीय वनों में परजीवी वनस्पतियों पैरासाइट ग्रोथ की अधिकता पाई जाती है। इन उष्णकटिबंधीय वनों में महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़ जैसे अत्यधिक मूल्यवान वृक्ष पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ सिंकोना, केला, बांस, जंगली रबड़ तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक महत्व के वृक्ष पाए जाते हैं, किंतु इन वनों में किसी एक प्रजाति के पेड़ों को झुंड में पाना कठिन होता है, जिससे इनका व्यावसायिक स्तर पर विदोहन एक्सप्लॉयटेशन करना कठिन हो जाता है। जीव जंतु एनिमल लाइफ। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वृक्षों के ऊपरी भागों में अनेक प्रकार की चिड़ियों तथा चमगादड़ आदि पाए जाते हैं। उनका भोजन कीट पतंग होता है। वृक्षों के मध्य भाग में अनेक प्रकार की चिड़ियाँ, स्तनपायी जीव मैमल्स, सांप जैसे रेंगने वाले जंतु रेप्टाइल्स तथा अन्य अपृष्ठवंशी जीव इन्वर्टिब्रेट्स निवास करते हैं। इन जीवों का भोजन वृक्षों की पत्तियां तथा उनके फल हैं। इन वनों में धरातल पर शाकाहारी हर्बीवोर्स तथा मांसाहारी कार्निवोर्स दोनों प्रकार के जानवर रहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विविधता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कैनाल जोन में 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कीटों की 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं।